Hare Krishna. Shri Shri Krishna Balaram Shri Shri Radha Radhika Raman. Shri Shri Gaur Nitai Jagannath Baldev Subhadra ISKCON Punjabi Bhag Mein 2012 Narsingha Chaturdashi Ke Din Aap Sabka Swagat Hai. Narsingha Bhagawan Ka Abhirbhav Tithi. आज के दिन भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे. प्रकट्य नरसिंह देव प्रकट्य. प्रभुपाद जी एक दिन प्रवचन में कह रहे थे कि नास्तिक लोग कहते हैं भगवान दिखाओ, ऐसे मूर्खों को झूठा करने के लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए. दिखाओ भगवान, दिखाओ कहां है तुम्हारा भगवान, ऐसे मूर्खों को झूठा करने के लिए, उनकी बात को झूठी करने के लिए, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए. और प्रभुपाद जी आगे कहने लगे भगवान को दिखाओ लोग कहते हैं, भगवान को दिखाओ लोग कहते हैं, अरे भगवान कहां नहीं है, मंदिर में नहीं है, दिल में नहीं है, भक्तों को संत सदैव हृदय शुभ लोग के अंति, लेकिन उसके लिए प्रेमंजन छुरीता. और ये अगर भक्तों के संग में भक्ति का रंग लग जाए तो हृदय में भगवान को 24 घंटे दर्शन करना संभव है. और मंदिर में, और फिर प्रभुपाद जी कहते मंदिर में दर्शन करने के लिए भी कुछ नियम है, जूता बाहर उतार के आना पड़ता है, तो कुछ तो नियम होंगे तब भगवान का दर्शन होगा ना. तो ऐसे कोई कहे कि मुझे भगवान देखो, ये तो मूर्खता है. सामान्य आपसे पूछते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री से कितने आप में से लोग मिले हैं, कितने लोग मिल के आए हैं अपने देश के प्रधानमंत्री से, ये हाथ है ऊपर कोई हा? अपने देश के प्रधानमंत्री को तो मिल नहीं सकते, और भगवान से मिलने के लिए चैलेंज करते हैं कि भगवान से मिलाओ. अरे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी योग्यता चाहिए, नहीं मिल सकता. तो भगवान से मिलने के लिए भी योग्यता चाहिए, और ऐसी योग्यता का उदाहरण प्रहलाद महाराज है, जिसके लिए भगवान ने अद्भुत रूप से अपने आप करने का, केवल अपने भक्त की बात को सच करने के लिए. आज के दिन का महत्व यह है कि भक्त नवे भक्त प्रणश्यति, जो भगवत गीता का श्लोक है नवे अध्याय का, कौन ते प्रतिजानी ही नवे भक्त प्रणश्यति. अर्जुन संसार को घोषणा करके सुनाओ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, जाके ये तुम वचन कर लो, संकल्प कर लो, बता लो, प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता. और प्रहलाद भक्त ऐसा अद्भुत महाभागवत है जिसको नाश करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ने सारे प्रयास किए लेकिन मर नहीं सका, नहीं मर सका. मारने के सारे रास्ते चुन चुन के ढूंढे और सारे निष्फल हो गए, एक भी रास्ता नहीं बचा. लेकिन बहुत बड़ी समस्या है कि मारने के लिए उसने बहुत बड़ी कई योजनाएं बनाई, जलाने से लेके फेंकने से, हाथी के पांव के नीचे देने से लेके समंदर में फेंकना, विष देना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज जो मारने की है सब करके देखी, मरा ही नहीं. नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता. श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के मुख से भागवत के सातवें स्कंद में जब प्रहलाद की कथा सुनते थे, और 10 अध्याय तो लंबे चौड़े कथा 10 अध्यायों में है, और कथा समाप्त होते कहते फिर पढ़ो एक बार, फिर यम तोटा के पास जहां शंकर जी यमराज ने शंकर जी की उपासना की, तोटा गोपीनाथ के पास जगन्नाथपुरी में महाप्रभु प्रतिदिन भागवत का श्रवण करते थे बड़े आनंद से जब वहां रहे, और ध्रुव और प्रह्लाद के चरित्र को सौ सौ बार सुना, सौ सौ बार सुना। हम तो साल में एक बार नरसिंह चतुर्दशी का सत्य सुनते हैं, तो प्रह्लाद महाराज की रक्षा के लिए नरसिंह देव ने अवतार लिया। बोला ये तो पहले से मालूम है, और कुछ बताओ। हमारा इतना धैर्य नहीं है, किसी ने इस दुनिया में भगवान के लिए इतना संकट सहा है जितना प्रह्लाद महाराज ने सहा। बचपन में पांच साल का छोटा बच्चा और दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक जो उसका अपना पिता है उसके द्वारा संकट सहा। कितना विश्वास था मां के गर्भ में शिक्षा प्राप्त की नारद से, उसके वचनों के ऊपर कितना विश्वास था कि भगवान हमारी रक्षा हर समय करेंगे, सब जगह भगवान है। हम तो 25-30 साल के बाद अच्छी तरह समझ बूझ के भगवद गीता पढ़ते हैं फिर भी विश्वास नहीं होता। और मां के गर्भ में, कयादु के गर्भ में प्रह्लाद ने ये नारद से शिक्षा ग्रहण की, और उस शिक्षा के ऊपर इतना विश्वास था कि हर परिस्थिति में वो कृष्ण कॉन्शियस रहा। भगवान कृष्ण की स्मृति उसको कभी भूली नहीं। जिसके लिए भगवान अवतार लेकर आए, ऐसे कोई और भक्त आपके ध्यान में है जिसके लिए भगवान प्रकट हुए हो रक्षा के लिए? गजेंद्र आए और चले गए, ठीक है, प्रकट हुए। अद्भुत, ये ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के तो अन्य अवतार हैं, अनेक अवतार हैं, लेकिन नरसिंह देव, रामचंद्र जी और कृष्ण, ये अवतार इतने अद्भुत है जिन्होंने अपने भक्तों के लिए परित्राणाय साधु नाम इस बात का जो भगवान के वचन है उसको सार्थक किया कि साधुओं की रक्षा करता हूं, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का संहार करता हूं। तो प्रह्लाद महाराज इसलिए सातवें अध्याय के ऊपर से कूद के जाने की जरूरत नहीं है, सातवें स्कंध से नहीं कहा चेतना महाप्रभु ने कि रासलीला पढ़ो और वो मुझे सुनाओ, कहा प्रह्लाद चरित्र सुनाओ। क्यों? इतना अटूट विश्वास, भगवान हर समय हमारी रक्षा करेंगे, और इतना पक्का विश्वास अपने गुरु के शब्दों में कि भगवान सर्वत्र है, इतना दृढ़ निश्चय, इतना दृढ़ संकल्प भक्त के लिए आवश्यक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं वैसे भी प्रह्लाद हमारे गुरु हैं, क्यों नारद जी के शिष्य हैं, और हम उसी संप्रदाय में, नारद जी की संप्रदाय में आ रहे हैं, और 12 महाजनों में एक महाजन प्रह्लाद है, प्रह्लादो महाजन है, एक महाजन जिए न गता सब पंथ, महाजन जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से चलो। तो हमें तो प्रह्लाद महाराज के और प्रह्लाद महाराज ऐसा भक्त है, कहीं भी भक्तों का नाम लिया जाएगा तो प्रह्लाद के नाम लिए बगैर भक्तों के नाम की सूची कभी समाप्त नहीं होगी। तो अब आज ये एक श्लोक हमने सिर्फ चुना है, अपने आप में बहुत सुंदर श्लोक है, इसका आवृत्ति करते हैं, इसको पढ़ते हैं और फिर सारे इस प्रह्लाद चरित्र और नरसिंह देव भगवान के गुणगान का प्रयास करेंगे। तो आइए ये श्लोक श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय जिसमें नरसिंह देव के द्वारा हिरण्याकश का उद्धार, यह अध्याय का नाम है। तो श्लोक पढ़िए। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम्,
सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम्,
व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्य अति अद्भुत रूपम् उद्वहम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् व्याप्तिं न भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यादि अद्भुत रूपम् उद्वहम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यम्। सत्यम का मतलब सत्य। विधातुम, विधातुम के बारे में आपका क्या विचार है? विधाता समझते हैं? विधाता का मतलब जो लिखा है वह कभी टलता नहीं है। जैसे विधाता ब्रह्मा को कहते हैं, जो जिसी के भाग में लिखा है वो कभी टलता नहीं है। तो विधातुम का मतलब इस तरीके से जैसे लिखा नहीं टलता है, ऐसे निज भृत्य भाषितम। निज मतलब अपना स्वयं का, भृत्य का मतलब सेवक, और भाषितों का मतलब जो उसने अपने मुख से वचन कहा। भक्त के मुख से निकला हुआ वचन विधाता का वचन है, टलने वाला नहीं। विधातुम का अर्थ हुआ विधाता, जो टल नहीं सकता। जैसे राम बाण है, अपने निशान पे जाएगा, कभी वो वहां से चूकने वाला नहीं है। राम बाण एक बार अनुसंधान हुआ तो अपने निशान पे जरूर जाएगा, और भक्त के मुख से वचन निकला तो वो सत्य होगा। सत्यम विधातुम, वो विधाता की वाणी के समान हो गया। उसको कोई भी झूठला नहीं सकता। आश्चर्य, विधातुम शब्द जो लिखा है बड़ा अद्भुत शब्द है अपने आप में। विधातुम, विधाता की वाणी की समय समान भक्त के मुख से निकला हुआ वचन सत्य रहेगा हमेशा। उसको असत्य हो नहीं सकता। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, अपने सेवक के वचन को सत्य करने के लिए। तो सेवक का वचन क्या था? सेवक का वचन था व्याप्तुम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, ये था वचन। हिरण्यकश्यपु ने दूसरी बार, पहली बार प्रह्लाद को 5 साल के बच्चे को पढ़ने के लिए कहां भेजा? अपने गुरु के, गुरु क्या, दैत्यों का गुरु का नाम क्या? शुक्राचार्य के दो बेटे संड और मर्क, संड और अमर्क के पास पढ़ने के लिए भेजा। घर में क्यों नहीं पढ़ाया? घर में बच्चों को, टीचर को घर में बुला के क्यों ट्यूशन नहीं दिया? हिरण्यकश्यपु बहुत बुद्धिमान था, साधारण व्यक्ति नहीं था। हिरण्यकश्यपु क्या विचार है आपको, बुद्धिमान था कि साधारण व्यक्ति था? हा, वैकुंठ से आया था। वैकुंठ से आया हुआ व्यक्ति चाहे असुर क्यों नहीं बने, उसके बराबर आज तक किसी का वैभव नहीं है। उसके समान वैभव किसी सामान्य संसार के व्यक्ति का हो नहीं सकता है। तो हिरण्यकश्यपु पहली बार अच्छा क्यों मैं पूछा था क्यों भेजा था गुरु के पास पढ़ने के लिए क्यों भेजा था घर में क्यों नहीं पढ़ाए। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है हिरण्यकश्यप से यह शिक्षा लेनी चाहिए बच्चों को ट्यूशन में घर पढ़ाने के बजाय स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए क्यों। हमारे बड़ी कोठी में बेचारा स्कूटर के ऊपर या साइकिल में या मेट्रो में टीचर पढ़ाने आएगा और बंगले में दो बड़ी मोटी गाड़ियां और बंगले का वैभव देखेगा तब बच्चे को पढ़ाएगा तो उसके मन में क्या भाव आएगा। पढ़ा लिखा मैं धक्के मैं खा रहा हूं ये मूर्ख इसको मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या उसके मन में आएगा कि ये पढ़ के बड़ा आदमी बने। उसके मन में क्या आएगा क्या विचार है। इन लोगों ने बहुत शोषण किया है हमारे बुद्धि बल का। खुद के मन में ये नेचुरल आएगा कि इन लोगों ने हमारी पढ़ाई का धज्जियां उड़ाई हैं हमको दर दर भटका रहे हैं क्या विचार है आपका। ऐसा विचार आएगा कि नहीं आएगा। हाँ तो हिरण्यकश्यप समझता था कि वहां जाके सामान्य बच्चों के साथ ये पढ़ेगा तो टीचर सबसे ठीक बात करेंगे। यहां तो टीचर बेचारा दूर से आते ही इसे प्रणाम करते हुए आता है वो कहां पढ़ाएगा। टीचर का मतलब अनुशासन करना अनुशासन कहां करेगा बच्चे के घर में आके नहीं। हिरण्यकश्यप से सीखने की चीज है। स्कूल में हमारे प्रहलाद के स्कूल के बच्चों में पढ़ाने का यह फायदा है कि स्कूल में जाएगा तो प्रचार कर पाएगा घर में क्या पढ़ के करेगा। घर में तो मास्टर को भी नहीं सुधार पाएगा। कि प्रहलाद का तो उद्देश्य दूसरा था लेकिन जनरली ये ये विज्ञान है कि पढ़ने के लिए बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए तो सामान्य बच्चों के साथ उठना बैठना सीखे। तो पहली बार घर छुट्टी पे आया जैसे रविवार की छुट्टी होती है पता नहीं कब होती होगी उनकी स्कूल में तो प्रहलाद को गोद में लेके हिरण्यकश्यप पूछा बेटा क्या तुमने पढ़ा क्या सीखा। तो क्या कहा प्रहलाद ने साधो मन्य पूरा श्लोक बोल दीजिए प्रभु जी कौन सा है श्लोक मेरे ख्याल में याद आएगा कहां है साधु तत् टी से ओके हरे कृष्णा बोलो तब तक
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
तत्व तत्सभायाम तत्संपुर कृष्ण क्या तत्त तत् साधु
हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे।
प्रहलाद महाराज ने कहा पिताजी यहाँ राज में भोग से कुछ मिलने वाला नहीं है वन में जाइए भगवान को ढूंढिए ये मैं सीख के आया। शब्द का तात्पर्य यह था वन में जाओ क्या उम्र होगी उस वक्त हिरण्यकश्यप की उसके छोटे भाई को तो मार दिया बारहदेव ने हिरण्यकश्यप को मार दिया और हिरण्यकश्यप के मारने के बाद अपनी मां दिति को और अपनी भाभी क्या नाम था ऋषभानु दोनों को समझाते हुए हिरण्यकश्यप कहता है इस दुनिया में परिवार क्या है यात्री कहीं घूमते हुए एक जगह बैठ जाए भोजन खाने के लिए, 5-25 आदमी इकट्ठे हो जाए, साथ में खाया पिया और फिर चल दिया, फिर तो कभी नहीं मिलते हैं वापस दुनिया में। ऐसे ही तो दुनिया के अंदर परिवार इकट्ठे होते हैं और समय के साथ बिछड़ जाते हैं, तो ये मरना जीना। लेकिन वो जो मां थी दीप्ति और जो पत्नी थी हिरण्याकश्यप की, वो तो उनसे इतना प्रेम करती थी, ये बात सुनने को तैयार नहीं थी। प्रेम तो अंधा होता है वैसे भी प्रेम में आदमी अंधा होता है, बुराई नहीं दिखती है किसी की। तो फिर कथा इतनी बड़ी महान बताई हिरण्याकश्यप ने बैठ के। हिरण्याकश्यप ने अपनी मां को और अपनी भाभी को कहा, वो यज्ञ कथा बताई कि यमराज कैसे छोटा बच्चा बन के आए। सुयोग्य महाराज के मृत्यु के ऊपर कैसे छोटा बच्चा यमराज बन के आए और उनको कथा बताने लगे कि तुम यहां रो क्यों रहे हो, ये तो मर चुका है, ये थोड़ी उठेगा थोड़ी। वो दो किलिंग पक्षियों का कथा नहीं सुनी है कि मादी पक्षी से जो जो फीमेल थे बहुत प्रेम करता था, कलिंग मेल शिकारी ने फीमेल को मार दिया, रोने लगा अब मैं जी के क्या करूंगा अकेला। और जब वो बहुत बड़ा विलाप कर रहा था तो पीछे से शिकारी ने मेल को भी मार दिया, तो तुम यहां रोगे तो क्या तुम्हारे पीछे मौत खड़ा है, तुम नहीं मर जाओगी, ये तो नहीं उठेगा, तुम भी मर जाओगी, छोड़ो इसको। इतना बड़ा प्रवचन करके आत्मा की अमर की कथा हिरण्याकश्यप ने बताई और दोनों को संतुष्ट किया, परिवार को संतुष्ट किया। ये हुआ उसका एक रूप। और दूसरे रूप में बाहर निकल के अपने सारे आदमी को इकट्ठा करके कहता है, सुनो विष्णु ने मारा है मेरे भाई को, अब तुम समझो कि विष्णु के रहने की जगह तो जानते हो ना कहां है, जहां यज्ञ होता है, जहां कीर्तन होता है, जहां गऊ की सेवा होती है, कहीं न होना चाहिए यज्ञ, न कीर्तन, न गाय का पालन, न ब्राह्मण साधु इकट्ठे होने चाहिए, जाओ चारों ओर वो जगह ही खत्म कर दो जहां विष्णु रहता हो और किसी को छोड़ना नहीं। कितना बड़ा बुद्धिमान, समझता है, ज्ञान भी है और तपस्या भी घोर करता है। चला गया मंदराचल में तपस्या करने के लिए, तपस्या कैसे करने लगा, दोनों हाथ ऊपर करके 100 देवताओं के सालों तक। यहां अपन 2 मंत्र तक भी हाथ ऊपर करते हैं तो हाथ नीचे आते उनकी तपस्या कितनी कितनी कठोर तपस्या होगी, आप एक दिन कर सकते हो ऐसे हाथ ऊपर 100 साल, वो भी देवताओं के 36,000 साल के बराबर ऐसे खड़ा था। ऐसे मैंने तो हाथ किया, नाक में खारिश हुई, इतना भी उसने हाथ नहीं हिलाया नीचे करके। हाँ तो बिल्कुल ऐसे ऐसे सख्त खड़ा था, इतना बड़ा वो चार नियम का पूरा पालन किया हिरण्याकश्यप ने 100 साल तक। हाँ नहीं तो क्या बगैर तपस्या के थोड़ी ऐसे तपस्या किया, चार नियम का पालन किया, मांस खा गई सब जीत खा गए, केवल हड्डियां बची, लेकिन हड्डियों में भी अमर रहने की कामना बच गई तपस्या करने का। तो क्या बताया था प्रभु जी ने, श्लोक निकाला श्री प्रहलाद उवाच, तत्साधु मन्याय असुरवार्य देहिनाम। अपने पिता को प्रहलाद ने पिताजी नहीं कहा, असुरवर्य, असुरों में श्रेष्ठ महान, असुरवर्य देही नाम सदा समुद्रिग्न धीयम असद्ग्रहात। शरीर लिया है ना इस दुनिया में तो समुद्विग्न, उद्विग्न कहते हैं उल्टी आने को, उद्वेग का मतलब उल्टी आना, खाना अंदर जाना चाहिए, जो वापस आए उसको उद्वेग कहते हैं। इस दुनिया में हमेशा आपको कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति मिलेगी जहां उल्टा होगा आपकी सोच के, बिल्कुल सोच के उल्टा होता रहेगा। धीयाम असद ग्रहण, और बुद्धि से असद को ग्रह किया है, असद ग्रह। प्रभुपाद जी इसके ऊपर प्रवचन दे के कह रहे थे, आपका देश अमेरिका बहुत बड़ा भौतिकवादी, आप समझते हो कि आर्थिक उन्नति से सब सुख हो जाएगा, क्या आप सुखी हो गए हो। प्रभुपाद जी उस वक्त में कह रहे, आर यू हैप्पी, बट यूर कंट्री हैज मेड हिप्पीज नॉट हैप्पी। उनको लोग आपके आर्थिक प्रगति ने हैप्पी बनाए हैं, हैप्पी तो कोई नहीं बनाया। तो इसका मतलब आर्थिक उत्थान आदमी को सुखी करेगा ये सत्य नहीं है। ये प्रहलाद महाराज 5 साल का बच्चा इस बात को कह रहे हैं और आगे बहुत अच्छे सुंदर और श्लोक कहेंगे। आकाश कितना बड़ा मान था, कितनी बड़ी सभ्यता इससे पहले यहां आई। अंग्रेज के राज को कभी खत्म होगा किसी ने सोचा था? अंग्रेज ने कभी सोचा था कि पूरे देश पूरे विश्व पे हमारा साम्राज्य कभी खत्म होगा? सोचा था कभी? आज कहीं पता है उनका कहां चले गए, नाम निशान मिट गया? ऐसी कई सिविलाइजेशन आई और कई चली गई, उनका नाम निशान भी नहीं रहा। तो ये इसका मतलब, ये सब हमारा प्रयास कि हम बड़ा सा मतलब राज्य बना के, बड़ा घर परिवार दुकान मकान फैक्ट्री बना के सुखी हो जाएंगे। ऐसे पहले कई चले गए, एक भी नहीं हो पाया। इसलिए ये रास्ता ठीक नहीं है, प्रहलाद कह रहा है ये रास्ता ठीक नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे भक्त इसको जानते हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए छह आज आके मंदिर के अंदर बोला हम जादू बनेंगे, हम मूर्ख नहीं बनना है। चबाए को चबाना है, सब यही करते हुए जा रहे हैं और फिर वापस घूम फिर के यही आना है, तो ये काहे के लिए करना। ये जो तीसरी लाइन में कहते हैं हित्वात्म पातम ग्रह अंधकूपम, हित्वा छोड़ दो, पातम पाप वैसे पाप पात कहते हैं, ग्रह अंधकूपम ये जो घर के अंदर भोग विलास में तुम फंसे हुए हो इसको छोड़ दो। अपने पिता को कह रहे हैं कहां जाऊं, पिता ने कहा क्या कहां जाऊं, वनम गतो, वन में जाओ, वृंदावन में जाओ, वनम गतो यद धरिम आश्रयेत, यद धरिम जहां हरि का जाकर आश्रय लो, संसार के तुम्हारे हरि का आश्रय लो। ऐसे अरणहकश बोलता है हंसा, अरे टीचर को बोला देखो विष्णु का कोई भक्त यहां से मंदिर से कोई प्रचार वाला घुस गया है, हमारे बच्चे की सारी सोच को इसने बदल दिया है, जाओ इसको अच्छी तरह से हमारी असुरी शिक्षा दो। ले गए, पूछा तुम कहां से सीख के आए, हमने तुमको नहीं पढ़ाया, इतना बड़ा श्लोक तुमने कैसे बोला? प्रहलाद चुप नहीं बोला, आश्चर्य लगेगा प्रहलाद के पिता ने बोला, पूछा तुम कहां से सीख के आया, नहीं बोला, गुरुजी ने पूछा उनको भी नहीं बोला, और स्कूल के बच्चों ने जब पूछेंगे प्रहलाद तुम हमारे साथ पढ़ रहे हो तुम ये कहां सीख के आए, तब बोलता है कि नारद जी ने सिखाया। जो सुधरने वाला नहीं है उसको सिखाने से ज्यादा बताने से फायदा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते पयो भुजन भुजंगानाम प्यानम विश्ववर्धनम, अगर दूध पिलाओगे सर्प को तो उसका विष ही बढ़ेगा, अमृत नहीं बनेगा वहां। तो इन लोगों को बताओगे नारद ने प्रचार किया है तो और क्रोध ही आएगा है मूर्खों को, वो शांत नहीं होंगे, किसी को नहीं बताएंगे। दोबारा घूम के जब दूसरी बार वापस आया तो पिताजी ने पूछा बेटा अब तो तुम ठीक शिक्षा ग्रहण किया ना, अब तुम्हारी शिक्षा क्या उच्च, श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम, ऐसे उठा के गोद से हिरण्यकश्यप ने नीचे फेंका प्रहलाद को, जैसे सांप गोद में आ गया हो, मेरे दुश्मन विष्णु का तुम नाम लेते हो, अरे इसको मारो जैसे मर सके ऐसे मारो, मारने का पूरा प्रयास किया मरा नहीं। तब हिरण्यकश्यप को डर लगा, ये नहीं मरा तो फिर मेरे को मरना पड़ेगा, कोई तो मरेगा, उसको मरना पड़ा, उसको सोचना भी चाहिए था कि ये छोटा है अभी नहीं मरेगा, मैं बड़ा हूं पहले मरूंगा, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा, बोला इसी को मारूंगा, मरेगा नहीं। अब विचलित देखा अपने राजा को तो दोनों पुत्र कहते हैं गुरु के, महाराज आप देवता लोग आपकी आज्ञा का पालन करते हैं फिर भी आप उनको डांटते हो तो बेचारे डरते रहते हैं, ये बच्चा है इससे डरने की जरूरत नहीं, हम प्रयास नहीं करते हैं, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे पिताजी आएंगे ना इनको सुधार देंगे, आप चिंता नहीं करो हमको दे दो। ले गए प्रहलाद को। अब प्रहलाद जब गया वापस और जब लंच ब्रेक हुआ तो प्रहलाद ने लड़कों को इकट्ठा करके और प्रवचन करना शुरू किया, बोलो कीर्तन करते हैं आओ, सबका कीर्तन करते हुए सुना, तब संड और मनक अमरक बोला अब अकेले नहीं है, अब सब साथ हो गए हैं, अब हमारे सुधारने से सुधरने वाले नहीं है, अब हमारा मरना निश्चित होता जा रहा है। तब जाके कहा महाराज आपको कोटि कोटि प्रणाम, ये आपका बच्चा हमारे से तो नहीं सुधरता, पूरी स्कूल के बच्चों को ही खराब कर दिया। तब नरसिंह, तब हिरण्याकश ने पकड़ के प्रहलाद को कहा तुम्हारी शक्ति कहां से आती है, जहां से तुम्हारी आती है, तुम्हारी पिताजी जहां से शक्ति आती है वहीं मां से आती, शक्ति तो एक ही जगह से आती है, तुम्हारा कहां है विष्णु। तब उसने कहा ये जो शब्द है अखिलेशु भूतेशु व्यापतुम, वो हर जगह हर प्राणी में हर कण कण में व्याप्त है, ये वचन था प्रहलाद का। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, क्या वचन था सत्य अपने भृत्य क्या, व्याप्तुम च भूतेषु अखिलेशु च आत्मनः, हर एक कण कण में प्राणी में भूत मात्र में भगवान विष्णु व्याप्त है, व्याप्त व्याप्तम, व्याप्तम का मतलब व्याप्त है मतलब उपस्थित है, व्याप्त है व्याप्त। तो जब प्रहलाद ने ऐसे कहा तो क्या विचार है, प्रहलाद ऐसे ही दुक्का मार रहा था कि उसको इसके ऊपर विश्वास था, हाँ प्रहलाद को सब जगह भगवान दिखता था, उसको अनुभव हो चुका था, हाथी के पांव के नीचे भी भगवान को देखा, पार से फेंका तो भी भगवान ने गोद में ले लिया, उसने ये एक्सपेरिमेंट कर चुका था कि भगवान हर जगह है हर समय है और हर काल में हर समय हर जगह सर्वव्यापक है भगवान, सर्वकालीन है और सर्वजानिक है, सबको सबके लिए उपलब्ध है, कोई भाग्यशाली है तो ले सकता है। अब जब ये कहा प्रहलाद ने तब हिरण्याकश ने ऐसी उंगली उठाई होगी, कहां ऐसे पूछा ना, उस वक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान हिरण्याकश की उंगली के ऊपर ऐसे ध्यान दे रहे थे कि जहां ये उंगली रखेगा वहीं से मुझे प्रकट होना पड़ेगा, नहीं तो मेरे भक्त का वचन झूठा हो जाएगा। अब भगवान हिरण्याकश कॉन्शियस हो गए तो भाई उंगली को देख रहे हैं कि यहां जहां उंगली रखेगा, तो जैसे उसने हाथ ऐसे किया तो भगवान उसके साथ ऐसे घूमते रहे। तब उसने क्या इस खंभे में, भगवान ने खंभे के अंदर ही खड़े हुए प्रहलाद की तरफ देखा क्या कहता है, तो प्रहलाद ने खंभे में भगवान को देखा, बोला हां है, तो देखा कैसा देखा भगवान को प्रहलाद ने, पहले देखा है अदृश्य, पहले कभी ऐसा देखा देखने में नहीं आया था, आश्चर्य प्रहलाद के हां है तो सही लेकिन पहले कभी नहीं देखा है, अति अद्भुतम बहुत अद्भुत है, अदृश्य पहले कभी नहीं देखा है, रूपम उद्वम अद्भुत रूप है, कैसा अद्भुत रूप है, स्तंभे सभायाम सभा के स्तंभ के अंदर से न मानुष न मृगम न मानुषम, न तो पशु लगता है और न मानव लगता है, ऐसा अद्भुत रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तो इस रूप में क्यों भगवान प्रकट हुए, भगवान के आने के लिए एक भक्त तो ये है प्रहलाद जिसके वचन को सत्य करना है, एक भक्त ब्रह्मा भी है उसके वचन को भी तो सत्य करना है ना, ब्रह्मा ने जो वचन दिया है वो भी तो भृत्य है ना भगवान का, ब्रह्मा का भी तो भगवान का भृत्य ही हुआ ना, निज भृत्य भाषितम, तो ब्रह्मा ने जो कह दिया था कि मानव से नहीं मरोगे, पशु से नहीं मरोगे, देवता से नहीं मरोगे, असुर से नहीं मरोगे, तो अब ऐसा बनना चाहिए कि ब्रह्मा जी का वचन भी तो सत्य हो ना, तो ब्रह्मा जी के वचन को भी सत्य करना था। तो ब्रह्मा जी से वरदान ये सब मांगे थे हिरण्याकश ने कि मुझे नहीं मरना है, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, जब नहीं मरना है तो क्या कहा होगा ब्रह्मा जी ने, क्या कहा ब्रह्मा जी ने, हाँ ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, इससे क्या सीखना चाहिए, कि जिसके पास जितना है उसमें से कुछ देगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। तो ब्रह्मा जी के पास भी जो चीज नहीं है तो वो कैसे देगा? ये पहला नहीं है, ये इसने आजमाया हिरण्यकश्यप, धोखा खाया, फिर वापस लौट के रावण बन के आया, तब फिर ब्रह्मा जी को ही आजमाया। मूर्खता देखो, दुबई ब्रह्मा जी से दोबारा वरदान लिया, एक बार हारा फिर भी वहीं चला गया, और फिर भी दोबारा भी ऐसे ही हुआ। जब रावण बना, ये कथा असल में सातवां स्कंद शुरू ऐसे होता है, कि छठे स्कंद में इंद्र की रक्षा करके और वृत्रासुर को भगवान ने मरवा दिया। तब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, तब परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, महाराज भगवान तो पक्षपात करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, और असुर वीरतासुर तो बड़ा महान दिख रहा था, बोलने में तो भक्त दिख रहा था, उसको मरवा दिया, क्या भगवान पक्षपात करते हैं? तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, तब सुखदेव महाराज कहते हैं कि मैं आपको उत्तर वही दूंगा जो आपके पितामह युधिष्ठिर ने नारद से पूछा था राजसूय यज्ञ की सभा में। उसने जब देखा, ये परंपरा है कि मैं वही उत्तर दूंगा जो पहले आपके पितामह युधिष्ठिर को नारद मुनि ने दिया था। क्या प्रश्न पूछा गया था? बोला शिशुपाल जन्म से कृष्ण का द्वेषी था, आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना द्वेषी था वो। और भगवान श्री कृष्ण की मासी का लड़का था, और मासी को मालूम था कि कृष्ण के हाथों इसको मरना है, इसलिए बोला मेरे आपका भाई है, इसको मारना मत। बोला 100, 99 और 100, उसके बाद विराम दे के फिर दोबारा गाली देगा तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन कंटिन्यूअस दी और गिना नहीं तो फिर मेरे ऊपर नहीं, इससे ज्यादा अगर हो गया तो मैं बख्शूंगा नहीं। तो शिशुपाल तो द्वेषी तो पहले से था, बीच में रुक्मणी के विवाह में प्रस्ताव रुक्मी ने रख दिया शिशुपाल का, तो थोड़ी देर कृष्ण का द्वेष भूल गया, क्यों विवाह में तो आदमी सब कुछ दुनिया की बातें भूल जाता है, विवाह की तैयारी में लगा। लेकिन जहां विवाह की तैयारी में जाके खड़ा था, अब तो दूल्हा बन के सेहरा बांध के खड़ा था, तब कहीं से रथ के ऊपर कृष्ण आया और रुक्मणी को लेकर चला गया। अब तो उसका द्वेष 100 times बढ़ गया, और वो तो मौका ढूंढ रहा था, और राजस्व यज्ञ तो युधिष्ठिर महाराज ने किया ही श्री कृष्ण को पूरे विश्व के अंदर पूजित घोषित करने के लिए था। अगर पूजा के लिए कृष्ण खड़ा हुआ, तब शिशुपाल को जो द्वेष था, उस द्वेष की आग में वो बोलने लगा और उसको गिनती भूल गई और 99 के ऊपर स्टॉप किया नहीं और 100 तक चला गया। बस ये गलती हो गई उससे, गिनती में पहले हमेशा सावधान होता था, आज गिनती में सावधान नहीं रहा और गलती कर ली, और 100 से ऊपर गया तो गर्दन कट गया। गिनती में सावधान शिशुपाल भी था, आपको 16 माना कि गिनती में सावधान रहना चाहिए इसमें सावधानी बहुत चाहिए हर हाल में, एक भी कम हुआ तो ठीक नहीं। और उस वक्त युधिष्ठिर महाराज ने देखा शिशुपाल के कटे हुए धड़ से, हृदय से आत्मा श्री कृष्ण के अंदर श्री कृष्ण के रूप में विलीन हुआ। तब युधिष्ठिर ने कहा, नारद जी ये क्या, जो गति योगियों को नहीं मिलती, जो गति तपस्वियों को नहीं मिलती, इस ईर्ष्यालु द्वेषी को कैसे मिली? तब नारद जी ने कथा बताई आपके पितामह को कि ये शिशुपाल, इससे भगवान बहुत प्रेम करते हैं, शिशुपाल भले द्वेष करे कृष्ण से, लेकिन कृष्ण शिशुपाल से प्रेम करते, उसी के लिए तो आए हैं। कोई और शिशुपाल को मारे मारे नहीं मार सकता। शिशुपाल से कृष्ण प्रेम करते हैं, ये उसी के लिए तो आए हैं। अवतार उसी के लिए लेने का एक कारण तो ये है कि अपने, तब नारद जी कहते हैं ये शिशुपाल ये दंडवकर दोनों भाई तो वैकुंठ में भगवान विष्णु के दरवाजे के दरबान है। वहां वैकुंठ से चार कुमारों को वही भगवान की लीला के लीला में भाग लेने के लिए चार कुमारों को उनके जो ब्रह्म के आनंद में रमण करते थे, दुनिया में किसी भोग में तो पड़े नहीं, ग्रस्त अंधकूप में तो गए नहीं, वो ब्रह्मा जी के पास एक दिन आए तो ब्रह्मा जी का बेटा कभी तुम्हें समय मिले तो जाके नारायण का वैकुंठ में दर्शन करना। तो एक दिन उनके मन में हुआ कि वैकुंठ का दर्शन करने जाते हैं। छह गेट के अंदर से गुजर गए, सातवें गेट के ऊपर जय और विजय ने डंडे दे दिए, आगे नहीं जाने दिया। भगवान विष्णु ने जय विजय के हृदय में भी प्रेरणा दी कि इनको रोको, और चार कुमारों में के हृदय में भी प्रेरणा दी कि इनको शराब दो। क्यों? क्योंकि भगवान को लीला करनी थी, नहीं तो कुमारों को क्रोध आए ये भी संभव नहीं है। और वैकुंठ के दरवाजे के ऊपर शरीरों का ध्यान करके बच्चों को नंगा समझ के और वैकुंठ में जाने से रोके ये भी संभव नहीं है। तो ये तो भगवान की प्रेरणा थी। और उस वक्त भगवान विष्णु अपने लक्ष्मी मात चरण दबा रही थी, गरुड़ पास में खड़ा था, किसी की तरफ नहीं देखा, भाग के गेट के ऊपर आए और प्रणाम करके कहा कुमारों को, ब्राह्मणों मैं आपके स्वागत में आने में मेरे को विलंब हो गई, उसके लिए क्षमा करना। और ये मेरे सेवक हैं, सेवकों को दोष भृत्य का दोष मालिक का दोष माना जाता है, इन्होंने आपका अपमान किया है, उसके लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं। अच्छा किया आपने इनको दंड दे दिया, अच्छा किया आपने इसको शराप दिया और मैं इसमें संतुष्ट हूं। लेकिन वो छोटे से बालक जो नीचे खड़े थे, उन्होंने ऐसे भगवान को ऊपर देखने से भगवान के चरणों में देखा, चरणों में देखा तो तुलसी और चंदन लगा हुआ था, उसकी जो मधुर सुगंध आई उनका तो हृदय ही बदल गया, उनका ब्रह्म आनंद कपूर की तरह उड़ गया और कृष्ण प्रेम उनके हृदय में उमंड आया। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं किया इन्होंने, द्वेष भाव समाप्त हो गया। लेकिन भगवान विष्णु का नहीं नहीं, आपकी बात भी सत्य करनी है। ये तीसरे भृत्य, एक तो प्रहलाद भृत्य बात को सत्य करनी है, दूसरा ब्रह्मा जी, तीसरे ये भृत्य चार कुमार जो सेवक है, उन्होंने कह दिया कि शराप है तो ये भी सत्य करना है। तो तीन तीन भृत्य की बात सत्य करनी। और तब नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज पहली बार ये हिरणाकश और हिरणाकशिपु बने थे, तब भगवान वराहदेव ने और नरसिंह देव ने उनका उद्धार किया। दोबारा ये रावण और कुंभकर्ण बने, तब श्री राम जी ने इनका उद्धार किया। इस बार ये शिशुपाल और दंडवकर बने हैं और श्री कृष्ण भगवान इनका उद्धार करने आए हैं। तो ये बात पक्षपात भगवान नहीं करते हैं। और उत्तर ये दिया था कि जो आदमी जिस गुण के प्रभाव में होता है भगवान उससे वैसे ही व्यवहार करते, भगवान किसी के द्वेषी नहीं है। सामान्य उदाहरण है, बिजली है, बिजली का किसी से पक्षपात है क्या? पंखे में ठंडी हवा देती है, बल्ब में लाइट दे रही है, फ्रिज में ठंडा कर रही है, हीटर को गर्म कर रही है, इसमें बिजली का कोई पक्षपात है क्या? हाँ, जैसा यंत्र है और जैसा यंत्र के अंदर मशीन है बिजली उसको वैसे चला रही है, ऐसे हमारे अंतःकरण का जैसा यंत्र है वैसा भगवान हमसे व्यवहार करते। एक ही पानी बगीचे में जाता है तो आम को मीठा करता है, नींबू को खट्टा करता है, करेले को खारा करता है, तो पानी का दोष है इसमें? पानी का दोष है क्या? नहीं ना, बीज जैसा होगा वैसा उसके अंदर रस आएगा। तो जैसा हमारा अंतःकरण है, सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के मिलने से नौ, नौ से इक्यासी, इक्यासी को इंटू इक्यासी करो तो 84 लाख प्रकार का अंतःकरण का रंग बदल जाता है। जैसा अंतःकरण का यंत्र वैसा भगवान उससे व्यवहार करते हैं। भगवान किसी को न मारते हैं तो भी उसका भला करते हैं, और बचाते हैं तो भी उसका भला करते हैं। दोनों हालत में भगवान तो भला ही करते हैं, किसी का बुरा करते ही नहीं। तो यहां इस श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद जी ने लिखा है, अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, कि भगवान सर्वत्र है और इस खंभे में भी है। प्रहलाद का अर्थ क्या होता है? जिसको देखने से आह्लाद हो जाए। इसका मतलब भक्त को देखोगे तो आपका दुख दूर हो जाएगा। अर्ली डेज में जब भक्त धोती और कुर्ते में, कभी कुर्ता भी नहीं मौसम के हिसाब से, केवल एक ओतरी पहने, हाथों में करताल मृदंग लिए रोड के ऊपर कीर्तन करते थे, और कीर्तन में वो इतने आनंद में मगन होते थे, नृत्य करते थे कि लोग अपनी ऑफिस से बैठ के उसको देखते थे, ये लोग इतने खुश कैसे हैं, आनंद में नाच रहे। पहनने के लिए तो जो चादरें पहन के, तब कहते चादरें पहन के घूम रहे हैं, बेडशीट पहनी हुई है इन्होंने, धोती को बेडशीट मानते थे वो, उनको मालूम नहीं था धोती क्या होती। पहनने को तो कपड़ा नहीं है, लेकिन इतना चेहरे के ऊपर खुशी क्यों है? लोग कहते हमारी ऑफिस कितनी अच्छी, एयर कंडीशन ऑफिस, 5-7-10 फोन पड़े, गाड़ियां खड़ी हैं, फिर भी सुबह से शाम तक हम चिंता में, और इनके पास कुछ नहीं है फिर भी ये सुखी क्यों है? ये लोगों के ऊपर बड़ा प्रश्न, लोगों का ये बहुत बड़ा प्रश्न था, और देखते थे कि ये खुश क्यों है, इतने सुखी क्यों है। पहला भक्त का मतलब है वो इतना आनंद में, उसको देख के दूसरे का भी दुख दूर हो जाता है। और किसी के पास जाए प्रहलाद तो उसका जीवन में परिवर्तन जरूर कर देगा, उसको सुखी कर देगा। पर स्कूल के बच्चों को सुखी कर दिया, आह्लाद कर दिया, प्रहलाद आह्लाद दायनी, सबको खुशी देने वाला, आह्लाद देने वाला, उल्लास देने वाला है। तो ऐसा भक्त जो सबका, और ये प्रहलाद का, जब नरसिंहदेव जब मांग कहेंगे कि वर मांग लो तो कहेगा स्वर्ग में, मैंने स्वर्ग के वैभव को देखा है, जिसके रहने वाले मेरे पिता हिरण्यकश्यप से थर थर कांपते थे, वहां मैं जाके क्या करूंगा। स्वर्ग की उसने परिभाषा इतनी सुंदर बताई कि जिसके देवता मेरे पिताजी से थर थर कांपते थे, वहां जाके मैं कौन सा सुख प्राप्त करूंगा, वो नहीं चाहिए। तो कुछ तो मांगो। बोला मैं इतना भक्ति आपका किया और फिर उसके बदले में कुछ मांग लूं तो ये तो व्यापार हो गया, ये तो दुकानदारी हो गई। और ये जब मैं कहता हूं तब प्रभुपाद जी का मानना है कि लोग मंदिर में जाते हैं कि चर्च में जाते हैं और जाके ही कहते हैं कि हमारे रोटी कपड़े की व्यवस्था करना भगवान, इसीलिए जाते हैं कि हमारा ब्रेड कहां मिलेगा। भगवान के पास जाके यही मांगते हैं। और प्रहलाद कहता है मैं मंदिर में आऊं, बैठ के प्रणाम करूं और फिर मांगूं, ये तो दुकानदारी हो गई, ये तो व्यापार हो गया, कुछ नहीं चाहिए। अगर वरदान देना है तो ये वरदान देखो दो दीजिए कि मैं कुछ नहीं मांगू। नहीं, हमारे साथ चलिए। तो प्रहलाद ने कहा जब तक एक भी मूर्ख इस दुनिया में दुखी रहेगा तब तक मैं उसको प्रचार करता रहूंगा, मैं अकेला नहीं चलूंगा। मैं अकेला नहीं चलूंगा, इन सबको ले चलेंगे तब चलूंगा। ये बहुत बड़ी बात है प्रहलाद का, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को दुखी नहीं देख सकता है। ये वैष्णव की पहचान है, अपने आप को बहुत निम्र मानता है, नीचे मानता है, लेकिन सबका हित करना चाहता है। तो प्रहलाद की बात को सच करने के लिए, अर्थात ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यहां तक के सभा भवन के खंभे के भीतर भी है, भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का था। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद महाराज से पूछा, तुम्हारा भगवान कहां है, क्या वो इस स्तंभ में है, इस खंभे में है, तो प्रह्लाद महाराज ने निर्भय होकर उत्तर दिया, हां मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। अतएव हिरण्यकश्यपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रह्लाद महाराज का कथन निभ्रांति है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, कह दिया है तो है, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकश्यपु ये नहीं जान पाया कि ये विराट देव सिंह है या मनुष्य। प्रह्लाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनिष्ठ नहीं होता, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कौन ते प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति। यद्यपि प्रह्लाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की धमकियां दे चुका था, किंतु प्रह्लाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, वे मारे नहीं जा सकते, ये विश्वास था, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला भगवान है। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो ये कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया, मत चिंतित हो, चिंता मत करो, मैं यहां उपस्थित हूं। नरसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया कि हिरण्यकश्यपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य था और न सिंह था। ये प्रभुपाद जी का भावार्थ है। तो अपने को क्या सीखना है आज नरसिंह देव के आज के आविर्भाव 2012 में? क्या सीखना है आज हमको? हाँ जी, भगवान के वचनों के ऊपर पूर्ण विश्वास हो। कौन सा वचन? जैसे कि नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तो हमको भगवान का भक्त बनना चाहिए। भक्त बनने में प्रह्लाद की तरह निर्भय होकर भगवान के वचनों के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कई बार भगवद गीता पढ़ते हैं, कई बार प्रह्लाद की कथा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि इस महीने कुछ इनकम कम आई तो पता नहीं घर चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या भाई, क्या विचार है? समस्या हमारी होती है कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। भगवान के वचनों के ऊपर पूर्ण विश्वास दृढ़ता के साथ, और कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी रुकावटें आए, तब भी भगवान का पल्ला नहीं छोड़ना है। ये दूसरी शिक्षा ग्रहण करनी है। ऐसे नहीं भक्त बनेंगे तो कोई संकट नहीं आएगा। हाँ, प्रह्लाद भक्त बन गया तो कोई उसको परेशान नहीं आई क्या? हाँ, अपना बाप परेशान कर रहा था, दूसरा भी नहीं। तो ऐसे नहीं है भक्त बनने से कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन उस दुख तकलीफ में अटल विश्वास के साथ रहने से निश्चित रूप से भगवान उसकी रक्षा करेंगे। ये भक्तों के लिए, भक्तों ने कितनी संकट सहे हैं, अभी हमारे पास संकट है कहां? ये पहले हमारे संकीर्तन के भक्ति पुस्तक वितरण करने के लिए बाजार में पुस्तक लेके खड़े होते थे, पुलिस वाला पकड़ के जाके जेल में डालता था। और आप कभी रशिया के भक्तों का छोटा सा किताब साल्टेड ब्रेड पढ़ के देखो, वो उसको जेल में केवल डबल रोटी मिलती थी, उसके अंदर नमक डाल के खाता था और कई साल तक जेल में केवल पुस्तक वितरण के अपराध में जेल में पड़ा था उन भक्तों के, और कितना उन्होंने सजा खाई है इसमें, वो तब प्रहलाद महाराज को याद आना चाहिए। और उसने प्रहलाद महाराज की कथा बताई थी उस भक्त ने, रशियन ने, कि भक्तों को मारने वाले को भगवान नहीं छोड़ता है। और दूसरे दिन वो जेलर जिसने उसको मारा था उसका पूरे परिवार के साथ एक्सीडेंट हुआ, और उसको तब सारी जेल को जब ये पता लगा तब उस भक्त को कहते हैं अब इसका नाम मत लाओ नहीं तो सब मर जाएंगे। ये रशिया के नास्तिक लोग, वो कथा प्रहलाद की बताता था वहां। देखो ये कथा ने उनको इतना उत्साह बढ़ाया कि वो उस वक्त में सोवियत यूनियन में जब प्रचार करना बहुत बड़ा प्रतिबंध था, तब उन्होंने कितनी कठिनाइयों से ये बॉम्बे के मंदिर के लिए प्रभुपाद का जब बहुत बड़ा जमीन के मालिक पहले तो दे दिया, फिर होटल वाले किसी को ज्यादा कीमत में देने के लिए तैयार हुआ और बहुत लड़ाई उसमें हुई। तो एक दिन प्रभुपाद जी बैठे थे बाहर, मेरे ख्याल में कहां बाहर के देश में, तो फोन आया कि जमीन का मालिक ऊपर चला गया। बोला मैंने ये तो नहीं कहा था नरसिंह देव को, मैंने ऐसे तो नहीं कहा था, मैंने कहा था भक्तों की रक्षा करने, लेकिन भगवान ने पता नहीं उसको क्यों मार दिया मुझे मालूम। कहने का प्रभुपाद का भाव था कि हम तो नरसिंहदेव भक्तों की रक्षा तो करते हैं, लेकिन अब उसके मूड में आया होगा तो उसको ही समाप्त कर दिया तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद ने उसने ऐसे भक्त को कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा था, ऐसे तो मैंने नहीं कहा था। तो नरसिंहदेव भगवान भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए, तो हमको भक्त बनना चाहिए। और भक्ति में रुकावटें आएंगी, भौतिक जगत है, और प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के ऊपर प्रभुपाद जी बहुत प्रवचन दिया करते थे। प्रायः कुछ श्लोक हमेशा प्रवचन में प्रभुपाद जी उद्धृत करते थे प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के ऊपर। छोटी सी पुस्तिका भी छपी, जैसे कुंती महाराज की महारानी की शिक्षा, कपिल देव की शिक्षा, ऐसे प्रहलाद महाराज की शिक्षा बहुत प्रिय थी प्रभुपाद के प्रवचन में। और विशेष रूप से अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है संसार में, तुम समझते हो सुख तुम अपने मेहनत से कमाते हो, क्या दुख के लिए कोई प्रार्थना करता है क्या, तो दुख भी तो सबको आते हैं ना, तो कर्मों का सुख और दुख है, इसलिए अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा अद्भुत शिक्षाएं प्रहलाद महाराज की हैं तो मेरे ख्याल में कितने श्लोक होंगे प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के श्लोक, कुछ प्रार्थना के श्लोक हैं, कुछ शिक्षाओं के श्लोक हैं, कम से कम आज के दिन समय निकाल के पढ़ लेना चाहिए और पढ़ के कुछ एक चीज को पकड़ लेना चाहिए। और नरसिंहदेव को प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे हिरण्यकश्यप तो आपने मार दिया, लेकिन हमारे अंदर बहुत से वासनाएं असुरी वासनाएं हैं, आप कृपा करके उसको जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारे हृदय में आपकी सेवा और भक्ति और आपके वचनों के ऊपर विश्वास हो, उसके लिए असुरी भावना का समाप्ति आवश्यक है, और ये नरसिंह देव को प्रार्थना करनी चाहिए आज के दिन। वैसे तो रोज ही भगवान हर समय हर जगह है, लेकिन आज के दिन उनकी कृपा जरा खुली दरबार होती है, जैसे कभी कभी कोई ऑफिसर खुली दरबार करता है कि जो भी आए, तो आज उनकी खुली दरबार है, आज उनकी कृपा सबको उपलब्ध है, जो भी भाग्यशाली लेना चाहे, कोई काम करना नहीं है, व्रत है, शाम तक बैठ के पढ़ लेना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? अंदर के असुरी भाव, अभी भाव असुरी समाप्त कभी नहीं होते हैं, हमेशा रहते हैं, लेकिन भगवान चाहे तो उनको धो के साफ कर सकता है। तो भगवान को ये प्रार्थना करनी चाहिए नरसिंहदेव को, एक साल और भी आगे हम बढ़ गए, हमारी अभी भी असुरी भावनाएं रहती है, उठ रही है, कृपा करके इनको आप जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए, हम आपके भक्त प्रहलाद के चरण चिन्हों के ऊपर चलते हुए महाजन जेन गत सपंथ दर तकलीफ और मुश्किल में कलयुग को सहने को तैयार हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से नाम सुमरण से हरि कीर्तन से हटेंगे नहीं, ऐसी आप हमको शक्ति दीजिए। ये शरीर जो आप हमारे को मिला है इसको हम आपकी सेवा में भक्तों के संग में लगा दें। ये प्रहलाद महाराज की एक अद्भुत शिक्षा है, और कहा भी अपने पिता को है कि अपने स्वयं के प्रयास से या किसी के प्रवचन सुनने से, या तीसरा क्या है स्वयं दूसरे या मीटिंग करने से या ऐसे भगवान के बारे में जानकारी नहीं होगी, ये संभव नहीं है। ये तो केवल भगवान के किसी भक्त की कृपा होगी तभी ये संभव है। और प्रहलाद महाराज एक तो भाव से वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन एक भाव से अभी भी सूतल लोक में रह रहे हैं। जो जो लोक हैं, जो वर्ष हैं, उसमें से एक वर्ष है जहां प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव की पूजा आज भी करते हैं। जैसे किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी राम जी की पूजा करता है, ऐसे हरि वर्ष में नरसिंह देव की पूजा प्रहलाद आज भी करते हैं। और प्रहलाद महाराज को भगवान वामन देव ने यह आदेश दिया कि आप बलि महाराज के साथ सूतल लोक में जाओ और इसको संग दो। तो आज भी प्रहलाद महाराज का संग उपलब्ध है उन भक्तों के लिए जो हर संकट को सह के भगवान के वचनों के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं और प्रहलाद महाराज उनकी सहायता करता है। और प्रहलाद महाराज का रोज और हमारे अपने इस्कान में, ये तो इस्कान के आरंभिक दिनों में भक्त के रक्षा के लिए प्रहलाद महाराज के ये मंत्र को, जो अपन दो जगह से मंत्र लिया गया, एक तो दस अवतार से लिया गया आधा, और आधा मंत्र जो है अन्य शास्त्र से लेके, और ये प्रार्थना नमस्ते नरसिंहा प्रहलाद अहलाद दायनी, ये तो मंदिरों के अंदर जब आतंकी लोग बड़ा उपद्रव मचाते थे तो मंदिरों में भक्तों की रक्षा के लिए ये सुबह और शाम मंत्र का उच्चारण शुरू हुआ। तो इस कान के अंदर इस तरीके से नरसिंह देव की पूजा उपासना का एक विधि है। जैसे संकट मोचन के हिसाब से हमारे संकट में भक्तों को रक्षा करने के लिए नरसिंह देव की उपासना विशेष रूप से इस अवतार की जाती है। तो भक्तों को प्रार्थना आज पूरा दिन करनी चाहिए। हरे कृष्ण। नरसिंह देव भगवान की, प्रहलाद महाराज की, श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। छुट्टी। हरे कृष्णा। कोई प्रयास, कोई प्रश्न तो नहीं, कोई जिज्ञासा प्रश्न है? बोलो बेटा।
भगवान तो प्रकट हुए थे आधे नर और आधे सिंह के रूप में, तो भगवान का नाम नर हरि क्यों कहते हैं? नर हरि क्यों कहते हैं?
नर हरि तो हरि तो है।
हाँ।
और निरहरि, नर हरि नर हरि रूपा। एक हरि का अर्थ शेर भी होता है। नर मतलब मानव, हरि का मतलब शेर है। हरि का एक अर्थ शेर है। हरे कृष्ण।
धन्यवाद।
ये राधा रानी को कहते हैं कामे वन में, वो हरि आया, बोला हमें शेर से बात नहीं करनी है। तो एक दूसरा अर्थ है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। नरसिंह देव भगवान की जय। जाओ पूरा भागवत के सातवें स्कंद के दस अध्याय पढ़ो।